दिन भर रविवार 8 नवंबर मैं हूं निखिल रंजन। बिहार में फिर एक बार लालू प्रसाद नीतीश कुमार 3/4 सीट लेकर महागठबंधन हुआ विजयी।
नरेंद्र अमित होलन फरार हो, सुमो नंदू होलन लाचार हो, मांझी पासवान कुशवाहा होलन बेकार हो।
चुनाव परिणाम आए हैं, इसके लिए मैं बिहार के लोगों को बधाई देता हूँ।
ये बिहारी लोग को ये मत समझो कि फूहड़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं।
बीजेपी ने मानी हार, प्रधानमंत्री ने दी नीतीश कुमार को बधाई, हार के कारणों की समीक्षा शुरू।
बिहार में दौरा करके जिलों में जाकर और समीक्षा करेंगे।
म्यांमार में आज आम चुनाव, आंग सान सू की को बड़ी कामयाबी की उम्मीद, आगे होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिल रही बम्पर जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये महागठबंधन और बिहार के लोगों की बड़ी जीत है और इसका राष्ट्रीय स्तर पर असर होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह की दिलचस्पी लोगों ने बिहार के चुनाव में दिखाई है, उससे जाहिर है कि लोग देश में सशक्त विपक्ष देखना चाहते हैं। वहीं लालू यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया है। लालू ने यह भी कहा कि अब वो स्वयं देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। म्यांमार में 25 साल बाद अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से हो रहे आम चुनाव में वोटिंग आज खत्म हो गई। चुनाव अधिकारी ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि शुरुआती अनुमानों की माने तो देश में 80% वोटरों ने अपने वोट डाले। मतगणना शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनावी नतीजे आने में वक्त लगेगा। आंग सान सूची की विपक्षी पार्टी NLD को चुनाव में बढ़त मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन म्यांमार की सेना के पास संविधान के मुताबिक संसद की 25% सीटें सुरक्षित हैं। वहीं आज मतदान करने आए म्यांमार के मुस्लिम मतदाताओं ने BBC को बताया। नया नेता बदलाव लाएगा, मुझे लगता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे लिए वो बेहतर काम कर सकें। वहीं मुस्लिम मतदाता मोहम्मद अकबर ने कहा कि इन चुनावों से हम मानवाधिकार के क्षेत्र में बदलाव देखेंगे, हमारे देश में विकास होगा। मैं यहाँ इसी विश्वास के साथ वोट डालने आया हूँ कि स्थिति बदलेगी, खासतौर पर मानवाधिकार के क्षेत्र में। ये थे म्यांमार के मुस्लिम मतदाताओं के शब्द, आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि पूर्वी प्रांत जाबुल में तालिबान के दो धड़ों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक लड़ाई में दोनों गुटों के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि तालिबान के मुखिया मुल्ला उमर की मौत की खबर के बाद से ही तालिबान में टूट की खबरें आ रही हैं। मुल्ला उमर के उत्तराधिकारी माने जा रहे मुल्ला अख्तर मंसूर के समर्थकों और एक अलग तालिबान गुट बनाने वाले मोहम्मद रसूल के समर्थकों के बीच संघर्ष जारी है। बांग्लादेश में दो लड़कों की हत्या के मामले में 6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये सजा दो अलग अलग मामलों में दी गई है। सिलहट में एक 13 साल के लड़के समीउल आलम पर चोरी का आरोप लगाकर 3 लोगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। दूसरा मामला खुलना का है, जहां एक अन्य 13 साल के लड़के रकीब के शरीर में भारी दबाव वाले पाइप से हवा भर दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मिस्र में विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। BBC समाचार।
BBC रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। महीनों से चले आ रहे अटकलों, चुनावी चर्चाओं, रैलियों, सभाओं, नारों, पार्टी के अलगाव, गठबंधन, समझौतों और घोषणाओं का नतीजा आ गया, बिहार का नतीजा आ गया। आज के कार्यक्रम में हम बिहार के चुनाव नतीजों को जानेंगे, समझेंगे और विश्लेषण करेंगे। खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद और पटना से पंकज प्रदर्शी और हमारे वो साथी जो लगातार बिहार के चुनाव में पल पल की खबर आप तक पहुँचा रहे थे। स्वागत है आप सबका BBC रेडियो पर संडे दिन भर में। मैं हूँ निखिल रंजन। बिहार के चुनावी नतीजों की चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फैलाओ जियारा आज प्रसारित नहीं होगा, अगले रविवार से आप इसे फिर सुन पाएंगे। जैसा कि आप लगातार TV चैनलों और दूसरे समाचार माध्यमों से सुन रहे हैं कि बिहार की जनता ने लालू नीतीश के गठबंधन को अगले 5 साल के लिए जनादेश दिया है। और आगे बढ़ने से पहले नज़र डालते हैं नतीजों पर। कुल 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इनके मुताबिक महागठबंधन 178 सीटें लेकर के जबरदस्त जीत हासिल करने में कामयाब हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू को 71 सीटें मिली हैं और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को 80 सीटें। कांग्रेस ने भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, कुल 40 सीटों पर चुनाव लड़के उसने 27 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता पाई है। इधर एनडीए गठबंधन की बात करें तो 60 नतीजे उनके पक्ष में गए हैं, जिसमें बीजेपी को 53, एलजेपी को 4, आरएलएसपी को 2 और हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसे 1 सीट मिली है। अन्य पार्टियों के और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके खाते में 5 सीटें गई हैं। मधुसूदन आनंद जी, ये नतीजे की उम्मीद आपने की थी?
देखिए, ये नतीजे की उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। एक सिर्फ एक जो एग्जिट पोल था एक्सिस का, उसमें इस तरह की बात जरूर आई थी। और लोक नीति ने जो सर्वे किया था, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, उसमें 4% के स्विंग दिखा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में, इस मोर्चे के पक्ष में। तो फिर भी ये उम्मीद थी कि 130-135 सीटें लेकर
मैक्सिमम,
ये मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन ये तो बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है और इस जीत ने एक नई तरह की सोच को फिर से पैदा किया है।
नतीजे आने से ठीक पहले तक तमाम एग्जिट पोल और बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक ये दावा कर रहे थे कि टक्कर कांटे की रहेगी और हारने जीतने के वाले जो गठबंधन के बीच में फ़र्क बहुत मामूली होगा। लेकिन जैसे जैसे आज दिन चढ़ता गया, नतीजों में हार जीत का फ़र्क बढ़ता गया। हालत ये हुई कि दोपहर होते होते फासला 2/3 तक पहुँच गया और ये तय हो गया कि लालू प्रसाद एक बार फिर बिहार की चुनावी बिसात पर कामयाब हुए हैं। पटना से पूरे दिन का हाल बता रहे हैं पंकज प्रियदर्शी।
कहानी पूरी फिल्मी भले ही न हो, लेकिन शुरुआत फिल्मी जरूर हुई। मतगणना शुरू होने से पहले भाजपा कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे, जबकि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर कम ही लोग थे। फिर वो हुआ जिसका एक तबका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शुरुआती रुझान में जैसे ही बीजेपी को बढ़त दिखाई गई, बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे, ढोल और नगाड़े बजने लगे और पटाखे की गूंज आसपास के इलाकों में सुनाई देने लगी। और तो और, भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे भी करने लगे।
190 के दावे की पोल खुल रही है, बिहार की जनता के विश्वास के भगवा रंग में बिहार चलेगा।
लेकिन फिर एकाएक परिस्थितियां बदली और जो हुआ वो ऐतिहासिक था। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की और दिन चढ़ते चढ़ते ये तय हो गया कि बिहार में इस बार महागठबंधन का परचम लहराएगा। थोड़े समय पहले महागठबंधन के जो कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे थे, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। फिर पटाखों का पता बदल गया, नारेबाजी की दिशा बदल गई। कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे थे और पार्टी के नेताओं की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद संजय गांधी,
ये जीत तो होना ही था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस बिहार के लिए किया है और जो कानून व्यवस्था का जो काम रखा है राज्य को, और बिहार कहाँ पहुँचाए हैं सारे लोग छिपी हुई नहीं, और हर वर्ग हर जाति के लिए उन्होंने काम किया है।
राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। नगाड़े बज रहे थे, टीवी देखकर जनता ताली पीट रही थी और नेता खुद ढोल बजाने में मशगूल थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रगति मेहता ने कहा,
प्रधानमंत्री मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देकर भाग जाना चाहिए।
दोपहर होते होते सारा ध्यान राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के घर की ओर चला गया। वहीं एक समर्थक ने ये कविता कुछ यूं सुनाई,
नरेंद्र अमित होलन फरार हो, सुमो नंदू होलन लाचार हो, मांझी पासवान कुशवाहा होलन बेकार हो, मंगल होलन एतवार हो, बिहार के जनता बुल्लक फिर एक बार हो, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो।
दोपहर बाद लालू यादव मीडिया से मुखातिब हुए और जीत के लिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा,
दोनों भाई आभार व्यक्त करते हैं और भाजपा का बिहार की महान जनता ने सुखड़ा साफ कर दिया।
दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन से गदगद पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये नतीजा नरेंद्र मोदी के लिए भी संदेश है।
वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं।
लेकिन घंटों से वीरान हो चले बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिली, जो टिकट बांटने में गलती के साथ साथ सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें देने पर काफी उत्तेजित थे।
लोजपा को कोई जरूरत नहीं थी 40 सीट देने, लोजपा को 10-12 सीट देना चाहिए था, कुशवाहा को 5 सीट देना चाहिए था।
शाम 4 बजे नीतीश कुमार के आवास पर महागठबंधन के तीनों नेताओं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के अशोक चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने कहा कि वे इस जीत को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और बिहार की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
चुनाव परिणाम आए हैं, इसके लिए मैं बिहार के लोगों को बधाई देता हूं और ये बिहार के लोगों की जीत है, बिहार की भावना की जीत है, ये बिहार के स्वाभिमान की जीत है।
तो बिहार की जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। महीनों से चल रहा लोकतंत्र का पर्व आज आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया और अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जल्द ही बिहार में नई सरकार बनेगी। पंकज प्रियदर्शी, BBC पटना।
इन जो नतीजे आए हैं, आपने ये रिपोर्ट भी सुनी, दिन भर के जो गतिविधियां हुई उससे भी आप वाकिफ हैं और महीनों से जो चुनाव अभियान चल रहा था उससे भी, आप इसको लालू और नीतीश का जो गठबंधन था उसकी जीत कहेंगे या बीजेपी की हार कहेंगे?
देखिए, ये जो है दोनों बातें हैं। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये बीजेपी की हार है, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से एक अहंकार का की शैली अपना ली गई थी, जिस तरह से सारे लोगों को बांटने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से पाकिस्तान को चुनाव के बीच में एक मुद्दा बना दिया गया था और जो कुछ भी बीजेपी के विरोधी थे जो लोग, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताया जा रहा था और जिस तरह से विकास का नाम लेकर शुरू हुआ जो चुनाव प्रचार था उसे जीतने के लिए जिस तरह से सांप्रदायिक आधार पर लड़ा गया, ये सब उसकी पराजय है। और जो अंकगणित था वो अंकगणित पहले से ही महागठबंधन के पक्ष में था। उम्मीद ये थी कि बीजेपी को कि शायद इस गठबंधन में वोट ट्रांसफ़र लालू के वोट नीतीश को या नीतीश के वोट लालू को और कांग्रेस के वोट ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, लेकिन देखा गया कि ये एक सॉलिड चट्टान की तरह ये वोट बैंक इनके साथ रहा इन तीनों पार्टियों का। और इसने ये बता दिया कि एक बार मोदी के रथ को रोकने के बाद दिल्ली में बिहार दूसरा प्रदेश बन गया है जिसने मोदी के रथ को रोका है, और ये संदेश दिया है कि वाकई अब जो है समय ये आ गया है कि आप गवर्नेंस का काम करिए, देश को लगातार चुनाव के मोड में रखने कि लगातार जैसे देश में चुनाव ही हो रहा है इससे बचकर कुछ और काम भी करना चाहिए।
आपने बात की कि उसके विजय रथ को रोक दिया है, लालू प्रसाद यादव भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
कि आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, यहाँ कोई झंझट नहीं है, असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। हम एक क्षण भी आरएसएस नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं वो संघ के प्रचारक हैं, क्लियर कर दीजिए, और संघ का प्रचार वो कर रहे हैं, देश के सामने विगत लोकसभा के चुनाव में हम लोग के बंटवारा का लाभ उठा के जो चारों तरफ गला फाड़ फाड़ के भाषण कर रहे थे, तो मोदी जी समझे कि हरियाणा है और महाराष्ट्र है, बिहार ने बता दिया, बिहार के करीब गुरबा जनता ने बता दिया कि बिहारी लोग को ये मत समझो कि फूहड़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ये बड़े भारी तपस्वी हैं, न जाने कितने लोगों को देखा है समझा।
लालू यादव जो कह रहे थे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से इनका सिक्का चल गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई और उसके बाद जो है लोगों ने वोट उनके पक्ष में दिया, वहां पर भी पहले कोई सीएम का कैंडिडेट या सीएम का चेहरा सामने नहीं रखा गया था, पार्टी के स्तर पर अगर आप देखें तो क्या चूक हुई है बीजेपी से?
देखिए, एक तो चेहरा इन्होंने नहीं रखा, स्पष्ट रूप से ये बात है। दूसरी बात, जो तमाम नेता थे बीजेपी के, उनके बीच जो एक तरह का समन्वय होना चाहिए था, उस समन्वय का अभाव दिखा। टिकटों के बांटने में गड़बड़ियां हुई, जैसा कि आर के सिंह, भूतपूर्व गृह सचिव, ने ये बात कही। शत्रुघ्न सिन्हा जैसे व्यक्ति को अलग रखा, आडवाणी जी को ज़्यादा, मतलब जो बुजुर्ग हैं, पितृपुरुष हैं, उनको ऐसा लगा कि जैसे मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, इनका कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। ये सारी चीज़ें जनता ने देखी और ये देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दो लोग चला रहे हैं, मोदी जी और अपने ये अमित शाह जी। तो ये बात जो भारतीय जनता पार्टी के और नेता हैं, चाहे प्रकट रूप से कह ना रहे हों, लेकिन अंदर एक खुन्नस उनमें ज़रूर इस बात को लेकर थी। और दूसरी बात, बिहार पर जिस तरह से कि हमले किए गए, तो बिहार के स्वाभिमान का प्रश्न नीतीश कुमार ने, लालू ने इसे बना दिया। लालू का वोट बैंक हमेशा MY सुरक्षित रहा है, हमेशा उस निरापद रहा है, तो उस वोट बैंक के वजह से, और जो नीतीश का अच्छा गुड गवर्नेंस थी और जो उन्होंने काम किया था विकास का, वो सब चीज़ें इस जीत में सहायक साबित हुई।
जो इस तरह के जो बयान आए इधर हाल के दिनों में, दादरी की जो घटना हुई, वीके सिंह का बयान आया, उन सब घटनाओं से लालू यादव का जो वोट बैंक जिसकी आप बात कर रहे थे, वो शायद और ज़्यादा मजबूत हुआ, एक साथ एकजुट हुआ, ऐसा मान रहे हैं हम?
देखिए, दो बातें हुई, बल्कि तीन बातें हुई। पहली बात, जो बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा। अब जंगल राज कहना, देखिए, जो लालू प्रसाद का पहला कार्यकाल था, उसमें जो दबे कुचले लोग थे, उनमें एक स्वाभिमान आया था। उनका सशक्तिकरण हुआ हो या ना हुआ हो, ये मैं नहीं कहता, लेकिन उनमें एक भावना, स्वाभिमान की भावना आई थी। आपने उस स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की। फिर जब नीतीश कुमार आए, तो नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में, और जिस समय बीजेपी भी उसके साथ शामिल थी, उसमें उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। बिजली की, ये कह रहे थे कि वहाँ बिजली नहीं है, जबकि जो संवाददाता वहाँ गए हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में बिजली है, गांव-गांव में बिजली पहुँची है, सड़कें पहुँची हैं, गांव-गांव में बच्चियाँ और बच्चे स्कूल जाते हैं साइकिल से। ये सारी बातें थी जिसको ढकने की कोशिश की गई अपनी आक्रामक शैली के जरिए, वो लोगों ने उसको नकार दिया।
और यही वजह रही कि जो है महागठबंधन को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। जीत के बाद वहाँ पार्टी के दफ्तर में किस तरह का मूड था, ये जानने की कोशिश की, ये देखा हमारी सहयोगी सीटू तिवारी ने। आइए देखें कि क्या उन्होंने भेजा है।
महागठबंधन की जीत ने पटना के वीरचंद पटेल मार्ग को आज सुबह से ही गुलजार कर दिया। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को जैसे ही महागठबंधन की तरफ रुझान के संकेत मिले, पार्टी दफ्तर समर्थकों से भर गए। पूरे माहौल में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती रही और बीच बीच में तेज आवाज वाले पटाखों की आवाज। महागठबंधन के समर्थकों को उम्मीद है कि नीतीश सरकार पहले से ज्यादा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी।
हम लोग का गरीब आदमी को खिलाते हैं, अथी करते हैं, सब कुछ हम लोग का देखते हैं, सब हम लोग का भी लड़का को मिल जाता है पैसा कौड़ी, अगर उनके कापी किताब, अगर हम लोग का रिक्शा चलाते हैं उनको।
नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरा करते रहे और हिंदुस्तान इनको रपेट के भगा दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लालू नीतीश जिंदाबाद।
वहीं पूरे माहौल में नारे गूंजते रहे, लालू नीतीश जिंदाबाद की लय में पार्टी कार्यालय डूबते उतराते रहे। वहीं महागठबंधन की महिला समर्थक भी पीछे नहीं रही, नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं ने नारे भी खूब लगाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी बिहार में बंपर रैलियों पर तंज भी कसा।
सुशोभित कर रहे थे पद को, उसके अनुसार न रहकर एक कार्यकर्ता के रूप में आया, फिर भी उतने बड़ी शक्ति उभर कर आए भी, तभी यहाँ उनको दरकिनार किया जनता ने।
हम लोग यही चाहते हैं, मेरा सरकार पुराना ही रहेगा जो पुराना मेरा सरकार है।
वहीं कांग्रेस दफ्तर में हालांकि माहौल में इतनी गर्माहट नहीं थी, लेकिन उनमें भी उत्साह कहीं से कम नहीं था। यहाँ कार्यकर्ता टीवी पर नजर गड़ा रहे और अपनी एक एक जीत को गिनते रहे।
उनको कायना दिखा दिया कि आप झूठे वायदे पे इस तरीके से सत्ता को नहीं चला सकते हैं, इसलिए अब उनको कम से कम बिहार की जनता ने जो सीख दिया उनसे उनको सीखने की जरूरत है।
इस दौरान खुशी के जश्न में डूबे वीरचंद पटेल पथ पर महागठबंधन के समर्थक तरह तरह की कलाबाजियां करते भी दिखे। गाड़ियों के बोनट पर डांस, तेज फर्राटे भरती मोटरसाइकिलों ने ये संकेत भी दे दिया कि समर्थकों में महागठबंधन की जीत की खुशी अगर अपार है, तो सरकार के सामने भी भविष्य में चुनौतियों का अंबार है। BBC के लिए पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
जेडीयू दफ्तर के बाहर किस तरह का नज़ारा दिखा नतीजों के बाद, ये आपने सुना। वाकई आज वहाँ होली भी मन रही थी और दिवाली भी मन रही थी, जाहिर है कि जितनी बड़ी जीत है। लेकिन इन सब के बावजूद लालू यादव की एक तरह से बिहार में ज़बरदस्त वापसी हुई है, सबसे ज़्यादा सीटें भी उन्होंने हासिल की है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब जो है वो नीतीश कुमार को प्रदेश की कमान सौंप करके और प्रदेश सरकार की बात का जिम्मेदारी सौंप करके और वो देश भर में अभियान चलाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा इस बारे में।
अरे कलकत्ता घुसना चाहते थे नरेंद्र मोदी, कलकत्ता के रिपोर्टर लोग सुन लेना, ये इनका प्लान था कि बांग्लादेश के बगल में जो कलकत्ता उसमें हम घुसे और बिहार ने इतना जबरदस्त वोट लगा दिया कि कलकत्ता से इनको पहुंचने का, बिहार से इनको खाली पर हम लोग लड़वा दिया बिहार की जनता। अरे खाली पर चले गए, हमने कहा था कि रिलायबल सोर्सेज से हमको पता लगा है इस जीत के संदर्भ, जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देके गुजरात वापस जाना पड़ेगा।
लालू यादव जी कह रहे थे कि अब ये जीत जो है वो नरेंद्र मोदी के विजय रथ को तो रोक ही रही है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे बढ़ करके आंदोलन चलाएंगे इस पूरे संगठन के जो कामकाज हैं उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और प्रधानमंत्री को मजबूर करेंगे कि वो वापस लौट जाएं।
देखिए प्रधानमंत्री को 5 साल का जनादेश मिला है, इसलिए प्रधानमंत्री वापस लौट जाएंगे इस बात को तो मैं कम से कम स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इनको भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा है, उस पर जो जिसको ये फ्रिंज एलिमेंट कहते थे वो स्वच्छंद रूप से जिस तरह से भाषण दे रहे थे, घूम रहे थे, उन पर एक अंकुश लगना चाहिए मैं समझता हूँ। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जो विपक्ष आपस में विभाजित और एक तरह से मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ था, उसमें इस जीत से एक नई जान आई है। अब इस जीत को वो वाकई में एक आंदोलन के रूप दे पाएंगे, तमाम तरह के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपस में मिलकर बैठकर बात कर पाएंगे। अब देखिए चुनाव से पहले गठबंधन बना जिसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे, लेकिन अंतिम समय में वो बिखर गए, अलग हो गए। तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो थर्ड फ्रंट है इसका जो इतिहास है वो ये रहा है कि ये बार बार बनता है और बार बार टूटता है। ये जो है समय की ज़रूरतों के अनुसार बनता है और फिर अपने कंट्राडिक्शन से, अपने अंतर्विरोधों से ढह जाता है। तो इसलिए मैं इसको लेकर तो कोई बहुत ज़्यादा कि ये बहुत लंबी चलेगी ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिलहाल जो प्रतिपक्षी ताकतें हैं, देश का जो बौद्धिक वर्ग है, जिसके जो बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं, जो असहमति की आवाज़ देने वाले लोग हैं, उनमें एक तरह का विश्वास आया है कि इस तरह की चीज़ को हमने पराजित किया है तो सरकार सबक लेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी इस मौके पर काफ़ी खुश थीं, और आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
आज आपकी पार्टी फिर से जीत चुकी है, इसे कैसे देख रही हैं आप?
अच्छा देख रहे हैं, जनता के जीत है, बिहार के जनता के जीत है। बेमारू राज कहने वाले को, जंगल राज कहने वाले को जनता जवाब दे दिया, बिहार के जनता।
अब आगे आपकी भूमिका क्या रहेगी?
भूमिका हमारा राजनीति में है ही है, भूमिका हम लोग विकास करेंगे बिहार में, घूम के सलाहकार हम लोग बनेंगे।
लालू यादव के दोनों बेटे भी चुनाव जीत गए हैं, मीसा भारती भी काफ़ी सक्रिय होकर चुनाव प्रचार कर रही थी, और लालू यादव तो खैर थे ही। लालू यादव पर अभी पाबंदी है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को अपने एक तरीके से सेकंड लाइन में खड़ा कर दिया है, किस तरह से उनकी भूमिका को आप आगे देख रहे हैं?
देखिए इस समय ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव, अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, लेकिन जिस तरह के फिलर्स आ रहे हैं वो एक ऐसी धुरी बनना चाहते हैं जैसी विश्वनाथ प्रताप सिंह एक धुरी बने थे। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह में और लालू यादव में एक बहुत फ़र्क है, एक सोफिस्टिकेशन, एक दूर का देखने की जो दृष्टि होती है वो। लेकिन फिर भी कम से कम वो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि उनके आसपास से या उनके संयोजन में कहना चाहिए एक मोर्चा बने, वो इस तरह की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी बहुत इसके बारे में निश्चयात्मक ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी इनमें सिर्फ एक समन्वय हो जाए कुछ मुख्यमंत्रियों के बीच, वही बड़ी बात होगी कि आप समझते हैं कि जयललिता, इनके लिए तैयार हो जाएंगी? क्या आप समझते हैं कि ममता बनर्जी इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी? ये बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, लेकिन समय की ज़रूरतें इन प्रश्न चिन्हों के अर्थ भी ढूंढ लेती हैं, इन प्रश्न चिन्हों के जवाब भी ढूंढ लेती हैं। वो आने वाला बीजेपी का जो समय है वो कैसा है, गवर्नेंस कैसी देते हैं, देश को जो विकास के मार्ग पर लाने की बात कर रहे थे वो विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, अब कम से कम उस तरह के सुधार जिस तरह के बीजेपी सपने देख रही थे उन सुधारों पर मेरे ख्याल से अंकुश ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए।
तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस पर प्रतिक्रिया जताई है, और मतलब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई है एक तरीके से, इस तरह के चुनाव परिणाम की किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आइए सुनते हैं कि तमाम राजनीतिक दल किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं।
एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल था। पटाखों की आवाज गूंज रही थी और पार्टी के नेताओं के तेवर भी बदले बदले हुए से थे। अब देखिए ना, जब आम दिनों में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पत्रकारों के सवालों की बौछार रहा करती थी, महागठबंधन की जीत के बाद उनका जोश कुछ यूं नजर आया।
नमस्कार, क्या सवाल है आज आपके?
महागठबंधन की जीत से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने वाले कई और दल भी बड़े मुखर होकर सामने नजर आए। अब भला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहते?
बिहार का यह नतीजा पूरे देश के लिए कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक है। एक तो बिहार के इस नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि इस देश के लोग नफरत की राजनीति नहीं चाहते, और नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि वो लोग समझ जाएं कि अब अगर दूसरी बार इन लोगों ने नफरत की राजनीति करने की कोशिश की तो इनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा।
मगर बिहार के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अपने सहयोगी दल यानी शिवसेना के निशाने पर ला खड़ा किया है। नतीजों के बहाने ही सही, शिवसेना ने प्रधानमंत्री पर ही निशाना साध दिया। पार्टी के नेता संजय राउत का कहना था,
बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के ऊपर अपना विश्वास फिर एक बार दिखाया है और ये बिहार की जनता की जीत है। पूरी मशीनरी लगाने के बाद भी आप इस तरह से हार जाते हो तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा। देखिए, जब आपको सत्ता मिलती है तो आपको ज्यादा नम्र होना चाहिए।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हार कबूल करते हुए ये स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के लिए की गई आर्थिक पैकेज की घोषणा को वो पूरी तरह से लागू करेंगे। परिणामों के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,
प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए जिस पैकेज की घोषणा की थी, मैं यह पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी पैकेज घोषित हुआ था एक एक पैसा वो बिहार को प्राप्त होगा। उस घोषणा का अक्षरशः पालन हमारी केंद्र सरकार करेगी।
आपने तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सुनी, बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुनी आपने। क्या लगता है कि इन नतीजों के बाद अब देश में की जो तमाम राजनीति है वो किस तरफ जाने वाली है, क्या होने वाला है बीजेपी की और उन बाकी पार्टियों के कामकाज के?
देखिए, इस देश की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब इसको लोकतंत्र की बात कही गई तो चर्चिल ने ये कहा था कि ये इस देश में लोकतंत्र क्या आएगा, ये तो अपने आप अपने अंतर विरोधों से ही जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लगातार देखिए कि एक बीजेपी की प्रचंड लहर आती है और नरेंद्र मोदी सत्ता में प्रतिष्ठित होते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो लहर कुछ समय तक रहती है, बाद में पहले उसको दिल्ली में उस लहर को रोका जाता है, फिर अब बिहार में रोका जाता है। तो ये कुल जो जीत है एक लोकतंत्र की जीत है, जहाँ की सत्ता से असहमत लोग, प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष लोकतंत्र की जो और जो उसके प्रतिष्ठान हैं वो फलें फूलें, लोगों को निर्भय होकर लोग रह सकें और अपने विकास की ओर देख सकें, वो सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, ये बताया गया है।
बहुत शुक्रिया मधुसूदन आनंद जी इस पूरी चर्चा के लिए। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बम्पर जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की जीत का असर राष्ट्रीय स्तर पर होगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब वो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। म्यांमार में 25 साल के बाद अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से हो रहे आम चुनाव में आज वोटिंग हुई। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने, और हरिता कांडपाल के साथ निखिल रंजन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।